एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो भविष्य की लगती है पर जिसकी परछाइयां हमें आज भी अपने चारों ओर दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं सुजैन कॉलिंस के उपन्यास दी हंगर गेम्स की, जो 2008 में आया था।
और ये किताब सिर्फ एक रोमांचक, मतलब एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये सत्ता, समाज और इंसानियत पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है।
और ये सवाल इतने असरदार इसलिए हैं क्योंकि लेखिका ने इन्हें अपने अनुभवों से सींचा है। उनके पिता एक मिलिट्री हिस्टोरियन थे।
अच्छा,
तो बचपन से ही कॉलिंस युद्ध की उसकी भयावहता की कहानियां सुनती थी,
तो वो सब उनकी लेखनी में झलकता है।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर खेलों और आज के रियलिटी टीवी, इन दोनों को मिला दिया
है और जानी पहचानी भी लगती है।
तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहले निम्न की तस्वीर कैसी है?
देखिए, एक तरफ तो है चकाचौंध से भरा अमीर और कह सकते हैं कि क्रूर कैपिटल, और दूसरी तरफ है उसके चारों ओर बसे 12 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स जो बस कैपिटल की सेवा के लिए जीते हैं।
मतलब ये तानाशाही का एक जीता जागता मॉडल है।
हाँ, और इस तानाशाही को बनाए रखने का हथियार है हंगर गेम्स।
अच्छा, तो ये गेम्स हैं क्या असल में?
सालों पहले डिस्ट्रिक्ट्स ने एक बगावत की थी, ये उसी की सजा है। हर साल हर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़के और एक लड़की को चुना जाता है,
जिन्हें वो श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट्स कहते हैं।
जी, और इन 24 बच्चों को एक बहुत बड़े मैदान में, एरिना में, तब तक लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक
सिर्फ एक जिंदा ना बचे।
और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस पूरी मार काट का पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट होता है।
तो ये सिर्फ सजा नहीं हुई है ना, ये फिर एक तरह का
मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
हाँ, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कैपिटल हर साल डिस्ट्रिक्ट्स को याद दिलाता है कि देखो, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी हमारे हाथ में है,
और वो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है ताकि वो कभी एकजुट ना हो पाए।
और इसी क्रूर परंपरा के बीच कहानी शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट 12 में,
सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट, जहां कोयले की खदानें हैं। रीपिंग का दिन है जब श्रद्धांजलि चुने जाने हैं,
और तभी वो पल आता है जो पूरी कहानी की नींव रखता है।
हाँ, जब महिला श्रद्धांजलि के तौर पर हमारी मुख्य पात्र 16 साल की कैटनिस एवरडीन की 12 साल की छोटी बहन प्रिमरोज का नाम पुकार लिया जाता है।
एक 12 साल की बच्ची का नाम सोचकर ही डर लगता है।
उस एक पल में कैटनिस जो करती है वो उसके पूरे चरित्र को, मतलब, परिभाषित कर देता है।
हाँ, वो उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए चिल्लाती है,
मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं श्रद्धांजलि के रूप में वॉलंटियर करती हूँ।
ये सिर्फ एक बहन का त्यार नहीं था, ये उस सिस्टम के मुंह पर पहला तमाचा था।
सही कहा, जहाँ समाज आपको स्वार्थी बनने पर मजबूर कर रहा है, वहाँ इतना निस्वार्थ कदम, ये अपने आप में एक विद्रोह था।
और यहीं से हम कैटनिस को समझना शुरू करते हैं। वो कोई हीरो बनने नहीं निकली है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक सर्वाइवर है। पिता की मौत के बाद से अपने परिवार को जिंदा रखने का बोझ उसी पर था।
तो वो शिकार करती है, नियम तोड़ती है, क्योंकि उसके लिए जिंदा रहना ही पहली प्राथमिकता है।
और भावनाएं उसके लिए कमजोरी हैं।
शायद इसीलिए पीटा मिलार्क, जो दूसरा श्रद्धांजलि है, वो उसके लिए एक पहेली बन जाता है।
हाँ, पीटा, बेकर का बेटा, वो कैटनिस से बिल्कुल अलग है ना?
बिल्कुल उल्टा, वो दयालु है, नर्म दिल है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके शब्द हैं।
ये टकराव ही तो कहानी की जान है। कैटनिस का लक्ष्य है एरिना से जिंदा बाहर आना,
लेकिन पीटा का लक्ष्य कुछ और ही है।
हाँ, वो कैटनिस से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के रूप में मरूं।
मतलब, मैं नहीं चाहता कि वे मुझे किसी ऐसे राक्षस में बदल दें जो मैं नहीं हूँ।
ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगाना जरूरी है?
ये सवाल पीटा पूरी कहानी में कैटनिस से और हम सब से पूछता रहता है।
और इन दोनों को गाइड करने के लिए मिलता है हैमिच एबरनेथी,
डिस्ट्रिक्ट 12 का इकलौता जिंदा विजेता,
जो अब एक शराबी और सनकी इंसान बन चुका है। शुरुआत में तो वो इनकी कोई मदद नहीं करता।
हैमिच को देखकर समझ आता है कि इस दुनिया में जीतने का असल मतलब क्या है। क्या कोई सच में हंगर गेम से जीतकर बाहर आ पाता है?
नहीं, उसकी आत्मा तो कब की मर चुकी है।
लेकिन जब वो कैटनिस और पीटा में वो लड़ने की जिद देखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है।
और फिर शुरू होता है कैपिटल का खेल।
हाँ, वो चकाचौंध, वो बनावटीपन।
वहीं कैटनिस को उसका स्टाइलिस्ट सिन्ना मिलता है, जो उसे द गर्ल ऑन फायर की पहचान देता है,
वो आग वाले कपड़े।
हाँ, और उद्घाटन समारोह में जब वो दोनों प्रवेश करते हैं, तो रातों रात दर्शकों के पसंदीदा बन जाते हैं।
लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो पीटा चलता है
इंटरव्यू में।
जी, गेम से ठीक पहले वाले इंटरव्यू में जब वो सबके सामने लाइव टीवी पर
ऐलान करता है कि वो सालों से कैटनिस से प्यार करता है।
कैटनिस को तो लगता है कि पीटा ने उसे कमजोर दिखा दिया।
हाँ, पर ये हैमिच और पीटा की एक सोची समझी रणनीति थी।
उन्होंने स्टार क्रॉस्ड लवर्स यानी बदकिस्मत प्रेमियों की एक कहानी गढ़ दी
और उस कहानी ने पूरे देश की सहानुभूति उनकी तरफ कर दी।
ये आज के रियलिटी टीवी और सोशल मीडिया जैसा नहीं लगता?
बिल्कुल, जहाँ असली भावनाओं से ज्यादा एक कहानी या नैरेटिव की कीमत करती है।
आपको दर्शकों को अपनी कहानी में इन्वेस्ट करवाना पड़ता है
क्योंकि हंगर गेम्स में दर्शकों का समर्थन ही आपको स्पॉन्सर्स दिलाता है
और स्पॉन्सर से मिली मदद ही जिंदा रहने की गारंटी है।
तो ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि छवि और मनोविज्ञान का भी युद्ध है
और ये युद्ध अरीना के अंदर और भी खूनी हो जाता है।
शुरुआती नरसंहार से बचने के बाद कैटनिस को सबसे बड़ा धोखा तब महसूस होता है जब वो पीटा को अमीर डिस्ट्रिक्ट्स के क्रूर करियर समूह के साथ देखती है।
उसे लगता है कि पीटा ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है
और यहीं पर लेखिका का फर्स्ट पर्सन में लिखने का फैसला कमाल का साबित होता है। हम सब कुछ कैटनिस की नजरों से देख रहे हैं। जब उसे लगता है कि पीटा ने धोखा दिया तो हमें भी वही महसूस होता है।
हम उसके साथ ही डरते हैं
और इसी अकेलेपन में उसकी दोस्ती होती है रू से,
डिस्ट्रिक्ट 11 की 12 साल की नन्ही श्रद्धांजलि।
हाँ, रू में उसे अपनी बहन प्रिम की झलक दिखती है। वो एक बहुत मासूम दोस्ती थी
लेकिन वो दोस्ती एक त्रासदी में खत्म होती है जब रू मारी जाती है।
रू की मौत कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। उसके बाद कैटनिस जो करती है वो सिर्फ शोक नहीं, वो एक राजनैतिक बयान था। रू के शरीर को फूलों से सजा देती है।
ये कैपिटल के नियमों के खिलाफ एक खुली अवज्ञा थी।
उसने पूरे पैनम को कैमरे के जरिए ये संदेश दिया कि रू उनके खेल का कोई मोहरा नहीं थी, वो एक इंसान थी।
और इस एक काम ने विद्रोह की पहली चिंगारी भड़का दी। डिस्ट्रिक्ट 11 में दंगे शुरू हो गए।
कैटनिस ने अनजाने में साबित कर दिया कि करुणा और सम्मान जैसे मानवीय भाव
एक क्रूर शासन के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं।
इसी विद्रोह को दबाने के लिए गेम मेकर्स एक नया नियम लाते हैं
कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के दो लोग विजेता बन सकते हैं।
ये सुनते ही कैटनिस पीटा को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे बुरी तरह घायल हालत में पाती है
और एक गुफा में उसकी देखभाल करती है। वहां कैमरों के लिए वो प्यार में डूबी लड़की का नाटक करती है लेकिन
धीरे धीरे नाटक और असलियत के बीच की लकीर धुंधलाने लगती है।
क्या उसका प्यार असली था या सिर्फ जिंदा रहने की रणनीति?
शायद कैटनिस खुद भी ये नहीं जानती। कहानी हमें इसी उलझन में छोड़ देती है।
अंत में जब सिर्फ तीन लोग बचते हैं, कैटनिस, पीटा और काटो,
तो कैपिटल अपना आखिरी दांव चलता है।
काटो को हराने के बाद जैसे ही वो दोनों विजेता बनने वाले होते हैं, एक घोषणा होती है
कि पुराना नियम फिर से लागू हो गया है, विजेता सिर्फ एक ही होगा।
ये क्रूरता की हद थी।
वो एक नाटकीय अंत चाहते थे जहां दो प्रेमी एक दूसरे को मारने पर मजबूर हों।
लेकिन कैटनिस ने उनका खेल खेलने से इनकार कर दिया।
उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उसने अपनी जेब से वो जहरीली बेरियां निकाली,
नाइट लॉक,
हाँ, और आधी पीटा को दे दी। संदेश साफ था,
या तो हम दोनों जीतेंगे
या हम दोनों मरेंगे।
आप हमें एक दूसरे को मारने का तमाशा नहीं दे सकते।
ये कैपिटल के अधिकार को सीधी चुनौती थी, एक शानदार दांव। उसने कैपिटल को उनकी ही चाल में फंसा दिया। गेम का नियम था कि एक विजेता होना चाहिए
और कैटनिस ने उन्हें शून्य विजेता का विकल्प दे दिया।
बिना विजेता के हंगर गेम्स का कोई मतलब नहीं था, उन्हें झुकना पड़ा
और दोनों को विजेता घोषित करना पड़ा।
इस तरह वो जिंदा बच जाते हैं लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने कैपिटल को नाराज कर दिया है।
हाँ, उनकी जीत एक विद्रोह की शुरुआत बन चुकी है।
और अगर हम उपन्यास के प्रतीकों पर नजर डालें तो मॉकिंग जे पक्षी बहुत अहम है।
वो पक्षी जो कैपिटल के एक असफल प्रयोग का नतीजा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए।
हाँ, और धीरे धीरे यही पक्षी विद्रोह, अस्तित्व और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है
और कैटनिस खुद द मॉकिंग जे बन जाती है।
और दूसरा प्रतीक है आग,
द गर्ल ऑन फायर। ये आग कैटनिस के अंदर का गुस्सा भी है, विनाश की ताकत भी,
और एक नई दुनिया को जन्म देने वाली चिंगारी भी।
तो सवाल ये है कि ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है?
मुझे लगता है ये हमें सत्ता के चरित्र के बारे में सिखाती है कि कैसे वो डर और विभाजन पर पनपती है,
और ये हमें मीडिया की ताकत और उसके दुरुपयोग के बारे में भी सचेत करती है,
और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी दया, प्रेम और अपनी इंसानियत को बचाए रखने की जिद
विद्रोह के सबसे शक्तिशाली रूप हो सकते हैं। एक छोटा सा निस्वार्थ कदम भी एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर सकता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।